नीचे आएगा ना श्रील प्रभुपादिकि नितैव प्रेमानन्दि जय राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव बिहारी जय जय गोपी जरा वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी जय जसदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीर वन तीर वन चारी किसी न हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण न हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
परिव्राज कचारी अष्ट सरस तैसे उत्ति वेदांत स्वामी श्री गौर पाद की जय। मृत्युपाद परमहंस परिव्राज कचारी अष्ट सरस तैसे भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर महाराज की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, समवेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौरते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततजयान्मुदिराय नष्टाय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती न इष्टके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, केंटू 10 अध्याय 9 श्लोक 5। तमां कमृडं पयत स्थानं स्नेहास्तुनं सस्मितमिक्षितं सुखं स्नेहास्तुनं सस्मितमिक्षिते सुखम् अतृप्तं सृज्य जवने सायथा बुध्यच्यमाने पयसि त्वधिस्थिते तमां करुणं पयत स्थानं स्नेहास्तुनत्वं सस्मितमिक्षति सुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवने सा यथा बुच्छिच्यमाने पयसि त्वधिस्थिते तमां काङ्क्रूढं पयत स्थानं स्नेहस्तुतं स्नेहस्तुनत्वं सस्मितमिक्षति सुखम् अच्युत्तमृत्रसृज्य जवने सा यथा बुच्छिच्यमाने पयसि त्वयधिश्रिते बोलिए।
अत्रे कमुत्रे
Matiji. श्लोकों के शब्द और ऐसे हैं, मेरे पीछे बोलिए। तम कृष्ण को अंकम आरुडम, बड़े ही स्नेह से उन्हें अपने गोद में बैठाकर, अपायत खिलाया स्तनम अपना स्तन, स्नेहस्तुनम स्नेह स्तुनोत्तम, अगाध स्नेह के कारण दूध बहता हुआ अस्मितम इक्षति मुखम, यशोदा ने हंसते हुए एवं कृष्ण को हंसते मुख को देखते हुए, अतृप्तम माता का दूध पीकर भी अतृप्त थे, उत्सृज्य एक तरफ बैठा कर जवन जलचित में, सा माता यशोदा ने यो यो वो स्थान छोड़ दिया, उच्चमो माने दूध बहते देखकर तो, लेकिन अधिश्रिते आग पर चढ़ी दूध हंडी में। ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। तो माता यशोदा ने कृष्ण को गले लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है तो वो बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उपनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी संतुष्ट नहीं हुआ था, तात्पर्य माता यशोदा का हर कामकाज कृष्ण के निमित्त था। यद्यपि कृष्ण अपनी माता का स्तनपान कर रहे थे, किंतु जब माता ने देखा कि रसोई घर में दूध उफन रहा है तो उन्हें तुरंत उसे संभालने के लिए वहां जाना पड़ा। इस तरह वो अपने पुत्र को छोड़ गई जो पूरा स्तनपान न कर सकने से असंतुष्ट और क्रुद्ध हो गया। कभी कभी एक साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्य को देखना पड़ता है, इसीलिए माता यशोदा अपने पुत्र को छोड़कर यदि दूध बचाने चली गई तो कुछ अनुचित नहीं किया। प्रेम के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि पहले वो एक काम करे और तब दूसरा, जिससे जिस उचित विवेक से ऐसा किया जाना चाहिए। उसी कृष्ण ने भगवद्गीता में 10 और 10 में इस प्रकार बतलाया है, ऐसा सतत युक्तानां भजता पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन माम मामु पयांतिते। कृष्ण भावनामृत में हर वस्तु गतिशील है, भक्त का मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण है कि परम सत्य के स्तर पर क्या पहले किया जाए और क्या बाद में। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तत्कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान के जो बाल लीला है चर्चा हो रही है। बहुत ये लीला उन व्यक्ति ही वंदन कर सकता है जिनका मति पूरा पूरा भगवान में अभिनिवेश है, पूरा पूरा जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, उन्हीं ऐसे से भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला से आनंद प्राप्त कर सकता है। तो हमारे जैसे ऐसे भौतिकता के साथ संघर्ष करने वाले भगवान की लीला को समझना और उसके ऊपर कुछ कहना ये बड़े दुष्कर विषय है। फिर भी श्री सुखदेव गोस्वामी की चरण कमल का अनुसरण करते हुए उनकी कृपा से हमें भगवान की लीला को थोड़े बहुत हमें समझने के लिए प्रयास करें, ये कहने सुनने के लिए प्रयास करें, अवश्य उनका कृपा हमें प्राप्त हो पाएगा। तो आज के प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी एक वात्सल्य भक्त का जीवन चरित्र कैसा होती है, एक वात्सल्य भक्त वात्सल्य रस के भक्त भगवान किस प्रकार स्नेह अपने हृदय में रखती है, तो वही वात्सल्य भक्ति को श्रील सुखदेव गोस्वामी सामने लिखित महाराज को बताते हैं। ऐसे तो भगवान के साथ अनेक रस में भक्ति किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यशमती मैया भगवान को जो सेवा कर रही है भगवान का जो सेवा कर रही है वो ये रस है, वात्सल्य। वात्सल्य रस के द्वारा भगवान को पुष्टि प्रदान करना चाहती है, भगवान को सुख देने का जो ढंग है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने भक्ति के कई रस का वर्णन किए हैं, लेकिन भक्त चुनता है अपने हृदय का सामर्थ्य लेकर, अपने हृदय के बल के आधार पर, अपने चेतना का भाव के अनुसार वो भगवान के साथ के रस का नाता जोड़ता है और वो रस में वो सुखी रहता है और वही रस के द्वारा भगवान को सुख देने के लिए कोशिश करता है। भगवान को रस, वो रस के द्वारा अपने हृदय में धरने के लिए वो प्रयास करता है। भगवान की अनगिनित शुद्ध भक्त है और भगवान अपने अनगिनित शुद्ध भक्तों के साथ अलग अलग रस का लेन देन करते हैं। भगवान के अनेक शुद्ध भक्त हैं, हाँ। और यहाँ पर जिस मत में यह भी भगवान के एक भक्त है, भले माँ का भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन है भक्त, वात्सल्य भक्त, वात्सल्य रस का भक्त यह समझ में यह है। तो वात्सल्य रस के द्वारा वो चिंतन कर रही है, वो सोच रही है, धन्य ये समझ में यह, उनका हर चिंतन हर कार्य का केंद्र है कृष्ण। ब्रज के जो प्रेम के केंद्र है वो कृष्ण है, इसलिए ब्रजवासी सफल बने अपने भक्ति के, अपने भक्ति में और अपने जीवन में। तो यहाँ पर यशोमति मैया अपने वात्सल्य रस के द्वारा हर समय सोच रही थी, चिंता कर रही थी, विचार कर रही थी, किस प्रकार मैं कृष्ण को सुख दूं। और रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में कई प्रकार वर्णन किए हैं रस के, विभत्स रस, वीर रस, आश्चर्य रस, चमत्कार रस। सारे रसों में से सर्वश्रेष्ठ रस पांच है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इस प्रकार के माइक्रोफोन शांत रस में अभी भगवान की सेवा कर रही है, उसी प्रकार आगे जाकर के दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। भगवान के अनेक प्रकार के सखियां है, जिस प्रकार अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। जो भगवान के अनेक प्रकार का सखियां है, अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है और बहिरंगा जो है भौतिक है और तटस्था जो है हम सब जीव शक्ति जो है भगवान के तटस्थ है। लेकिन भगवान भगवद गीता में बताते हैं ममेवांश जीव, ये जो जीव है मेरा अंश है। तो भगवान के अंश होने के नाते जीव जो तटस्थ शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति में आती है, लेकिन भौतिक शक्ति के अंतर्गत होने के कारण वो जीव क्या हो गया यहाँ पर, आध्यात्मिक और बहिरंगा का मिश्रण हो गया है। वो अंतरंगा जीव जो हम सब जीव है, भगवान क्या कह रहे हैं, जीव जो मेरे अंश है, उनके अंश होने के नाते भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा अंश होने के नाते अंतरंगा संस्कृति में आना चाहिए। लेकिन जीव, जीवात्मा, जीव जब बहिरंगा शक्ति के संस्पर्श में आता है तो फिर वो अंतरंगा शक्ति में नहीं रहता, तो मिश्रित शक्ति हो जाता है। बहिरंगा और अंतरंगा ये दोनों मिश्रित शक्ति हो जाता है। तो भगवान का जीवात्मा भगवान का शक्ति होने के नाते तो स्वतः उनके भीतर सेवा करने की प्रवृत्ति रहती है। जीव भगवान का अंश होने के नाते उनके भीतर ये नेचुरल, ये स्वाभाविक सेवा करने का प्रवृत्ति उनके भीतर है। जब वो आत्मज्ञान में होता है तो भगवान का सेवा करता है, आत्मज्ञान में जब रहित होता है तो फिर माया का सेवा करता है। किसी भी दशा में वो सेवा कर, वो करता है, चाहे वो माया का, माया भी भगवान का शक्ति है और जब अपने स्थिति को जानता है तो फिर वो भगवान का सेवा करता है।
दशा में वो भगवान का सेवा में है। भगवान कहते हैं वो किसी भी हालत में वो माया का सेवा करे या मेरा, वो कर रहा है। और यही भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हमें भगवान को प्रार्थना करते हैं। हाँ, हे भगवान का अंतरंगा शक्ति, अभी जीव हाँ बहिरंगा शक्ति में है, तो इसीलिए हरे शब्द का उच्चारण करता है। हरे मतलब भगवान का आह्लादिनी शक्ति, भगवान के अंतरंगा शक्ति। तो भगवान का अंतरंगा शक्ति राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी ऐसे के भक्त है, वो ही अकेले कृष्ण का सेवा कर सकते हैं, और कोई नहीं है। तो हम सब राधा रानी तक पहुंचाते हैं, हम सब सीधा नहीं पहुंचाते हैं, माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमारा सेवा कहां तक जाती है, राधा रानी तक। राधा रानी वहां पर निर्णय लेती है, ये जीवात्मा का सेवा कृष्ण का लायकात है। यदि राधा रानी वहां पर निष्पत्ति लेती है, हमारा सेवा कृष्ण का चरण को छू सकता है, तो फिर राधा रानी हमारा सेवा को हाँ कृष्ण तक पहुंचाते हैं। तो हाँ, मैं पता क्या बताया कि हाँ, तो ये जो सेवा हमें करते हैं, तो हमें भगवान का हरा शक्ति को प्रार्थना करते हैं। आप इस प्रकार का भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो कृपा करके हमें भी उस प्रकार का सेवा का अवसर दीजिए, सेवा प्रदान कीजिए। तो प्रत्येक जीव के भीतर भगवान का सेवा करने के लिए कुछ गुण होना चाहिए, कुछ योग्यता होना चाहिए। प्रत्येक जीव के भीतर कुछ योग्यता होना चाहिए। ये योग्यता क्या है? एक है नम्रता और दूसरा क्या है? सहनशीलता। ये दो गुण प्रत्येक जीव के भीतर होना चाहिए। भगवान का सेवा करने के लिए प्रत्येक जीव के दो गुण होना चाहिए। एक है नम्रता, नम्र होना चाहिए। हाँ, नम्र नहीं है तो भक्त भगवान का सेवा नहीं कर सकता है। और दूसरा क्या है? सहनशीलता। सेवा करते वक्त अनेक प्रकार के कठिनाई हाँ भगवान का सेवा में आप खड़े हो जाती है। ये कठिनाई को, ये आने वाले जो परिस्थिति को एक भक्त झेलने की शक्ति भक्त की होनी चाहिए, तब जाके वो भगवान की सेवा कर सकता है। नम्रता और सहनशीलता, हाँ ये दो सेवा गुण होना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी एक भक्त सेवा भक्त का सेवा ड्यूटी किचन में था, तो वो भक्त सेवा छोड़ करके जप कर रहा था, जब कर रहा था, ठीक उसी समय प्रभुपाद जी ड्यूटी की जो किचन है तो उसके भीतर चले गए। तो ड्यूटी के किचन के भीतर जब चले गए तो प्रभुपाद देखे ड्यूटी के जो मंगल आरती के जो है सब वो बर्तन सब पड़े हुए हैं। तो प्रभुपाद जी आए वो भक्त के पास और भक्त को बोले, पूछे आप क्या कर रहे हो? तो भक्त बोले, प्रभुपाद मैं तो जप कर रहा हूं। तो प्रभुपाद जी क्या किए, सीधा उनका जप पाला को लिए रख दिए, जाओ पहले सेवा करो बाद में जप करोगे। सीधा उनका हाथ से जप माला लिए रख दिए और उनका आदेश दिए, जाओ पहले सेवा बाद में जप। तो यही तो हमें कर रहे हैं, मांग रहे हैं। और जब हमें सेवा मिल जाता है, सेवा मतलब कृपा, सेवा मतलब भगवान का आशीर्वाद, तो ये कृपा का लायकात हमें नहीं हो पाते, योग्य नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार जो भी हमें गुरु के कृपा से कि वैष्णव की कृपा से जो भी छोटी सी सेवा मिला ना, वो छोटी सी सेवा हमें सिद्धि प्रदान कर सकता है। हमें जो भी छोटा सा छोटा ही सेवा मिला है ना, वो छोटी सी सेवा यदि हमें लगन से करे ना, उनको ही प्राण जीवन दे करके करे ना, ये छोटी सी सेवा एक ही ना एक ही दिन हमें कृष्ण का दर्शन कराएगा। ये छोटी, भले वो मंदिर का झाड़ू मारने की सेवा होना क्यों, मंदिर का झाड़ू मारने का जैसा सेवा को यदि वो भक्त दृढ़ता के साथ, भगवान तो यही देखते हैं तो कितने मेरा सेवा के प्रति दृढ़ है, कितने वो निष्ठावान है। ये निष्ठा सेवा बड़ी बात नहीं है, भगवान हमारे भीतर जो निष्ठा, मेरे प्रति कितना वो दृढ़ है, मेरे भक्ति मेरा सेवा कितने दृढ़ है, प्राण जाए लेकिन भगवान का सेवा न जाए, हाथ से छूट ना जाए, इस प्रकार का चेतना जो भक्त का बन गया तो फिर कृष्ण का अधीन हो जाते हैं। हाँ, कृष्ण वो भक्त का बन जाते हैं। इस प्रकार का हाँ वृंदावन गोलोक वृंदावन में भक्तों को जो गोपियों को जो सेवा मिलती है, कोई गोपी को पान बनाने के लिए मिला वो पान ही बनाते रह जाएगा, कोई गोपी को पानी गिलास ला करके राधा रानी के पास पहुंचाना है वो उनका वही सेवा है, वही पानी गिलास ला करके दे और कुछ नहीं। कोई गोपी को हाँ राधा कृष्ण को पंखा झेलने का सेवा, वही पंखा ही झेलेगा और कुछ नहीं। गोलोक वृंदावन में पच्चीस विशेष एक भक्त का यही ही सेवा है और यही सेवा ही उनको मोक्ष प्रदान कृष्ण का चरण में प्रेम उत्पन्न कराएगा। उसी प्रकार अधिकारी के द्वारा जो भक्तों को जो ही सेवा मिला है, ऐसा नहीं कि प्रचार करूंगा धूमधाड़न करूंगा बाद दो दिन के बाद बस खत्म ना, ये कोई भी सेवा तो उनको वही ही उनका प्रचार है। जब एक भक्त कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, भले वो भक्त कैसे भी वो प्रचार नहीं कर रहा है, मंदिर में झाड़ू मार रहा है, कि झाड़ू मार के यदि कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो हो गया ना उनका प्रचार। गिलारी कितना छोटी सी जीव है, राम राम का सेतु में छोटी सी सेवा किया, भगवान का हाथ राम का हाथ आ गया ना उसके ऊपर, आज भी गिलारी जैसे वो प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? अपनी छोटी सी सेवा के द्वारा वो भगवान का भगवान को प्रसन्न कर लिया। आज भी उनका प्रचार को उनका सेवा का आधार लेकर के हमारे भीतर भी ये बल बढ़ रही है। मातंगर सबरी ने जो छोटी सी सेवा कर रही थी वही सेवा को करते रही बुढ़ी हो गई। मातंगर जी ने कह दिए ये सेवा को करते रहो, इसी तरह गुरु हमें कह दिए ये सेवा करो। मातंग ऋषि के अनुसार सबरी ने करती रही बूढ़ी हो गई, जीवन समा जवान से लेकर बूढ़ी हो गई, बाल पक गई, झुक गई, तो यही सेवा को करते रही। लेकिन राम आ गए ना, उनका सेवा में प्रसन्न होकर राम आ गए ना। संत लोग बता रहे थे वो जो माँ सबरी थी वो पहले जन्म में भक्तों की बहुत सेवा की थी। इस सेवा मतलब सेवा की चीज है, सेवा से भगवान जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हमारे एक प्रोफेसर थे, वो सेवा के ऊपर इतने जोर देते थे। हमारे कॉलेज में आई कैम पढ़ता था, जो ज्यादा ओल्ड एज लोगों को जो बुढ़े हो चुके थे होते हैं तो लोग का आई कैम आंख ऑपरेशन करते थे। हमें कॉलेज के स्टूडेंट सब हमें 7 दिन तक हमें घर में नहीं आते थे, घर से निकल जाते थे, 7-8 दिन तक कॉलेज में रहते थे और 80-100-200 ऐसे ओल्ड एज लोगों को उनका उस समय वो अंधे हो जाते थे, उनका आंख ऑपरेशन होकर आंख में पट्टी बांध देते थे। तो लोगों का सब उनको टॉयलेट ले जाना, उनको खिलाना, वो वोमिटिंग कर देते थे, उनको उठाना, पूरा हमें यही सब करते थे। तो हमारे जो प्रोफेसर थे एक ही दिन आप लोग का ये सेवा आपको कृष्ण दर्शन कराएगा। ठीक से वही बात हुआ, मैं आज भी सोच रहा हूँ, मैं वो समय सोचा नहीं था, उस समय पढ़ाई कर रहे थे, हमारे जो प्रोफेसर थे हम सेवा में लगा देते थे। तो उनका वो समय का जो कहना है आज मुझे याद आता है, आप लोग का ये जो सेवा है ये सेवा एक दिन आप लोगों को कृष्ण का दर्शन कराएगा। राजा में कितने भाग्यवान है, यदि वो इतने ये नहीं हुए हैं फिर भी कम से कम कृष्ण का सेवा तो मिल गया। जो सेवा देवताओं लोगों को नहीं मिला है वो सेवा आज हमें प्राप्त हुआ है। देवता लोग भी तड़पते हैं कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त हो, और मिलने के बाद भी देवता लोग ब्रह्मा इंद्र जैसे वो लोग भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा को समझ नहीं पाते। तो कितने भाग्यवान है हम लोग, भगवान का सेवा मिला प्राप्त हुआ है हमें। तो कुमदास प्रभु बता रहे थे ये जो सबरी थी वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़े राजा के महारानी रानी थी, और जब रानी थी उनके महल में साधु लोग आया करते थे, और ये जो रानी उनके महल में आए हुए साधुओं का बड़े ही प्रेम से सेवा करती थी, लेकिन राजा को बहुत पसंद नहीं होता था। ये क्या है, रानी हमेशा आने वाले साधुओं का सेवा में लगा हुआ है, क्या है? लेकिन रानी जी सुनते नहीं थे, वो साधुओं की सेवा में बड़े ही चित्त वृत्ति लगाए थे। तो साधुओं की सेवा करते करते साधुओं की जो पुण्य है हाँ, उनकी जो सुकृति है, उनकी कृपा को प्राप्त कर ली थी। एक दिन राजा के साथ वो प्रयाग गए थे, हाँ, प्रयाग स्नान के लिए। प्रयाग में स्नान करते करते प्रयाग में उनका शरीर छूट गया, जान अनजान में छूट गया। तो उनके परवर्ती जीवन ये सभी का जीवन मिला। और सभी जंगल में एक बिल्ली जंगली, हाँ, जब उम्र हो गई तो पिताजी ने उनका शादी कराने के लिए व्यवस्था की, और उनके शादी बारात लोगों को भोजन देने के लिए कम से कम 2-500 बकरा को बांधे रखे थे। तो उनका है ना, गांव में होता है ना, तो बकरा का मांस खिलाते हैं बारात को। तो और ये जंगले दिल्ली थे, तो वो सुप्री ने जाके अपने पिताजी को पूछे कि पिताजी बताइए, ये मेरा तो शादी है लेकिन इतने सारे बकरे क्यों हुए? तो उनके पिताजी बोले कि तुम्हारे जो बारात आएगा ना, तुम्हारे शादी में जो बारात आएंगे ना, ये बारात लोगों को ये सारे बकरे को मार करके उनका मांस परोसा जाएगा, भोजन कराया जाएगा। तो सबरी ने सोचा, अरे मेरा शादी और इतने जीव का बर्बादी, इतने सारे बकरे जीव का हत्या होगा मेरा शादी में। तो राता रात वो घर शादी सब कुछ छोड़ करके भाग गए, घर छोड़ दी भाग गए। हाँ, तो भागते 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 हाँ, कुछ मातंग ऋषि और कुछ ऋषि लोग जंगल में भजन कर रहे थे, तो वहां पर आकर के पहुंचे। हाँ, तो पहुंच करके हाँ, वो आसपास में रहने लगी, साधुओं का साथ आसपास में रहने लगी। हाँ, तो यही है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की तरफते थे एक शुद्ध भक्त की शरीर का स्पर्श लेने के लिए। हरिदास ठाकुर अपने को मेच समझ करके, जब नीच समझ करके दूर भागते थे, चैतन्य महाप्रभु उनका शरीर स्पर्श करने के लिए हाँ, उनको पकड़ने के लिए दौड़ते थे। और कहते थे भी, हरिदास तुम्हारा शरीर इतने पवित्र है, हाँ, तुम्हारा शरीर इतने शुद्ध है, मैं खुद पवित्र होने के लिए मैं आपका शरीर का स्पर्श करना चाहता हूँ। स्वयं भगवान, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते थे। तो वो सबरी साधु के आसपास रहने लगी, और ये साधु लोग उठने से पहले वो जाकर के उनका कोटिया साफ कर देती थी। साधुओं को जो आवश्यक चीजें भगवान के पूजा के लिए, तो वो ला करके रख देती थी। इसी प्रकार उनका सेवा, भगवान भक्तों की सेवा मतलब भगवान की सेवा, प्रभुपाद जी बताए, भक्तों की सेवा मतलब भगवान का। तो हाँ, ये लो, ये चीज को हाँ, जो लोग तमोगुण रजोगुण से रहित जीव है, ये बात को वो समझ पाएंगे। लेकिन कलयुग में प्राय ऐसे तमो रजोगुणी है। तो हाँ, वो जाती थी, सेवा करती थी, आ जाती थी, साधु लोग उठती थी, अरे इतने सुंदर सेवा कौन कर रही है, उनके सेवा में प्रसन्न हो गए। जगह माधाई ने यही किए, नवदीप वासियों को प्रसन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वही जो नवदीप घाट है उसी को ही साफ कर रहे, करने लगे, उसी को ही किए, और यही की करके वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने कर लिए। इतने सुंदर से नवदीप घाट को साफ कर रहे थे जगह माधाई ने, हाँ, उनके सारा जो अपराध है, हाँ, सारा जो पाप कृत्य है, हाँ, जाते रहा जाते रहा। तो सेवा, सेवा का फल ऐसा, हाँ, वो सारे दूषित जीवन से वो शुद्ध प्रदान, शुद्ध कर देती है। तो कर करके आ जाती थी वो सभी। तो साधु लोग उठते थे तो इतने सुंदर सेवा, प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। एक दिन मातंग ऋषि पकड़े, मातंग ऋषि पकड़े और पकड़ करके उनको हाँ पूछे, क्या आप रोज ऐसे आते हो, अब रोज इस प्रकार का सेवा करते हो? तो डर के मारे वो खड़ी हो गई, सभी डर के मारे साधुओं को देखकर खड़ी हो गई। तो मातंग ऋषि, अपने समय हुआ, अपना साधना में सिद्ध हुए। तो जाते जाते मातंग जी ने, मातंग ऋषि ने कह दिए, बेटी हम हमारा तपस्या के बल पर हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन लेने के लिए, लेकिन आप इस प्रकार का तपस्या किए हो, भगवान आएंगे आपको दर्शन देने के लिए, हम हमारी साधना हमारा तपस्या पूजा के बल पर हमें जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन आप इस प्रकार का साधना तपस्या अपनाएं, आपका साधना आपकी तपस्या में आकृष्ट हो करके भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके पास आएंगे। अरे यही हुआ, एक दिन भगवान राम आए ना सबरी को दर्शन देने के लिए। तो कहने के अर्थ यह है, मंदिर में हमें जो सेवा मिलती है ना, बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, नहीं तो जय विजय जैसे हमें गिर जाएंगे, गिर सकते हैं। मंदिर में जो सेवा हमें प्राप्त हुआ है तो हमें बड़े सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये कोई वैकुंठ अलग नहीं है। प्रभुपाद जी कहे हैं ये स्कंद संस्था जो है एक वैकुंठ है। यदि हमें सावधान से नहीं करेंगे, जिस प्रकार का वैकुंठ से जय विजय गिर गए, हमें भी इस प्रकार गिर सकते हैं। मैं गिरने के लिए नहीं कह रहा, गिर सकते हैं। जिस प्रकार जय विजय वैकुंठ से गिर गए, किस लिए गिरे? चाहे भगवान का व्यवस्था जो हो, भगवान का योजना जो हो, लेकिन सेवा में खड़े हुए थे ना। भक्तों के प्रति सेवा बराबर नहीं किए तो भक्तों ने क्या किया, मैं सेवा का लायकात नहीं हो। इसी प्रकार ये वैकुंठ में, प्रभुपाद जी के बनाए हुआ ये वैकुंठ में जो हमें सेवा प्राप्त हुई है, यदि उनको ढंग से सावधानी से नहीं करें तो फिर उसी प्रकार का हमें भी हमारा भी हो सकता है। एक बार ऐसा घटना, वो समय हमारा ये मंदिर में नित्यानंद त्रयोदशी मनाए नहीं जा रहा था, तो नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव में हमें जाने के लिए, तो हमारे जो आज के जो राधा गिरिधारी को डेकोरेट किए सजाए गिरिधारी प्रभु और मैं, हम दोनों हमारा मंदिर से वो मंदिर में गए। मंदिर में पहुंच जब पहुंचे वो मंदिर में कुछ जो मंदिर के ब्रह्मचारी थे भक्त थे, तो हमें पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हो। हम बोले हमें राधा गिरिधारी से आए हैं। तो बड़े यहाँ से बात किए हैं, ठीक किए हैं। आज जो प्रसाद के समय हुआ, और प्रसाद के समय क्या होता है, सबको जल्दी कृपा चाहिए। हाँ, भगवान का प्रसाद भी एक कृपा है, वो जल्दी हमें प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मारम ठलुम ठलिम होती है। तो वो समय ऐसा भी हुआ, वो मंदिर में नित्यानंद प्रभु का जो सफा हो जाने के बाद इतने भक्त हो गए और लाइन में हमें खड़े थे और हम भी खड़े हुए थे। तो इतने धक्का धुकी हो रहा था, हमें लाइन में खड़े होते हुए भी भक्त के धक्के से हमें लाइन के बाहर हो गए। ऐसा तो मैं पकड़ा हूँ, मतलब धक्का मार के बाहर कर दिए। तो हमारे लाइन का बाहर हो गया। अब बाहर जब हो गया, मगर बाहर हो गया हाँ, तो प्लेट मेरा हाथ में था, प्रसाद का थोड़ा मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो मैं वो ब्रह्मचारी लोग जो भक्त लोग जो सभा में खड़े हुए थे, तो मैं मेरा प्लेट बढ़ा दिया। जैसे बढ़ा दिया वो इससे से थोड़ा वो रजोगुण में आ गया, लाइन में आओ, ये करो सो करो। उनका बोलना उचित था, मुझे लाइन में होना था, लेकिन धक्का से मैं बाहर हो गया। तो मैं दे दिया हाथ, दिखा दिया मुझे प्रसाद दे दो। और मुझे मेरा धैर्य नहीं था, मैं लाइन में खड़े रह करके प्रसाद लूँ, तो मैं बढ़ा दिया। तो वो थोड़ा गुस्से में हुए लेकिन दिए प्रसाद दिए। और इस प्रकार का जो चल रहा था, तो वही मंदिर के एक कंग्रीगेशन भक्त, साधा सीधा भक्त था, फ्रंट साइड में था, तो वो देख रहे थे। तो मैं प्रसाद का प्लेट लेकर के जब मैं वहां पे पहुंचा, तो भक्त ने कहा, भले साधारण सा भक्त था लेकिन उनका भावना, उनका चेतना ना, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन सेवा के पीछे हमारा चेतना कैसा है, यही महत्वपूर्ण है। भगवान का सेवा तो कर रहे हैं, शरीर को कष्ट हो रहा है, यही तपस्या है। भगवान का सेवा करते समय जो शारीरिक कष्ट होती है, जो भक्त सह लिया, वही वास्तविक तपस्या है। तो मैं प्लेट लेकर के जब जाके पहुंचा, वो भक्त साधारण था, कंग्रीगेशन भक्त था, गृहस्थ था, टेंट सेट में था, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, प्रभु जी ये भक्त जो प्रसाद सेवा कर रहा है, उनको पता नहीं है कितने बड़े भाग्य मिला है। जो सेवा देवता लोगों को नहीं मिलता है, वो सेवा का अधिकारी वो हुआ है, लेकिन वो कर क्या रहा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु पहले पहले भक्तों को प्रसाद सर्विस करते थे, बाद में प्रसाद लेते थे। प्रसाद सर्विस जो है बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, स्वयं भगवान ने किए, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किए। ये सेवा के द्वारा हमें चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। जब अनेक हाथ आ जाता है ना, जब प्रसाद सेवा करते हैं ना, अनेक हाथ आ जाता है। तो ये हाथ किसका है? भगवान भी कहते हैं कि ये एक प्रकार की मेरा ही है। और वो समय जो प्रसाद सेवा कर रहे हैं, तो भगवान देखना चाहते हैं। सेवा कर रहे हो ना, करो सेवा। भगवान देखते हैं, वो भक्त का परीक्षा लेते हैं। वो समय जो प्रसाद सर्विस सेवा करते हैं, भगवान वो भक्तों का वो समय परीक्षा लेते हैं। सेवा कर रहे हो ना, करो। मैं कई हाथों से आपकी सेवा लेना चाहता हूं। जब कई भक्तों का हाथ आ जाता है, तो भगवान के एक प्रकार का कहना चाहते हैं वो भक्तों को, सेवा करने वाले भक्तों को, मैं कई हाथों से, अनगिनत हाथों से मैं आपकी सेवा लेना चाहता हूं, करो सेवा। तो वो समय वो भक्तों को बड़ी सावधान हो जाना चाहिए। जो समय हमें सेवा करते हैं, वो समय दो गुण अपनाना चाहिए। एक है सावधानी पूर्वक सेवा करना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। सावधान यही हमें ढीले हो जाते हैं। सेवा करते हैं तो नेग्लेक्टली होकर सेवा करते, इसलिए अपराध कर बैठते हैं। इसलिए जो समय सेवा कर, किसका सेवा कर रहे हो? भगवान का सेवा कर रहे हो। इसलिए सावधान पूर्वक, सावधानी से सेवा करना चाहिए। यही बात को स्वयं भगवान ने शिक्षा श्लोक में बताया, सावधान पूर्वक जप न करना। एक ही गुण को यदि हम अपना लेते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। जो समय हमें नाम सेवा करते हैं, तो वो समय क्या, जो समय भगवान का नाम सेवा हमें करते हैं, ये एक ही महाप्रभु एक ही उपदेश को यदि कोई भक्त पालन करता है, सावधानी पूर्वक जप करना। इसी प्रकार वो समय हमें दो गुण को अपनाना चाहिए, सावधानी पूर्वक सेवा करना चाहिए। भले लाखों भक्तों हो ना क्यों, हमें हमारा गंभीराई से छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे सामने परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन भक्त जो सेवा करने वाला गंभीर होना चाहिए और उनको सावधानी से सेवा करना चाहिए। और क्या है? प्रेम। प्रेम से छोटी सी वस्तु दो ना, आपका छोटी सी दिया हुआ वस्तु, वो दिया वो सामने वाला भक्तों के हृदय में प्रेम प्रकट करा देगा। यदि आप छोटी सी सेवा करके आप सामने वाला दूसरे भक्तों के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करा देते हो, तो क्यों हमें दो चीज दो गुण को नहीं अपनाएंगे? यदि आप ये छोटी सी सेवा के द्वारा दूसरे के अंदर कृष्ण प्रेम प्रदान करने के सक्षम हो पाते हो, तो क्यों हमें थोड़ा सा प्रेम न दें? इसीलिए जब सेवा मिलता है, भगवान यही देखते हैं, प्रेम। विदुर रे घरे कृष्ण करील भोजन। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का 56 प्रकार का व्यंजन को छोड़कर विदुर के घर में चले गए। हालांकि विदुर झुप में रहता था, तो ये महल में रहता था। 56 प्रकार का आइटम को छोड़कर विदुर रे घरे कृष्ण करील भोजन। विदुर के घर में जाकर के विदुर ने क्या खिलाया? साग और भात खिलाया। और भगवान खाए, भगवान खा लिए, भगवान खा लिए। ये प्रेम, भगवान प्रेम की भोगे हैं। ये गुण को अपनाना, प्रेम मार्ग की भक्त जल्दी सिद्धि प्राप्त करेगा। ज्ञान कर्म ये ध्यान उसके द्वारा, इसीलिए हमें गुरु के प्रार्थना में कहते हैं, प्रेम भक्ति या हैते अविद्या विनाश जाते। अविद्या को नाश करना है, ज्ञान ध्यान योग काम का नहीं है। प्रेम भक्ति या है इसे अविद्या विनाश जाते। अविद्या को नाश करना है, नाश करने के लिए क्या है? प्रेम। प्रेम मार्गी, प्रेम भक्ति, प्रेम का अवलंबन करना चाहिए। भले मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं, छोटा हूं, लेकिन मेरे हृदय में जो आपके प्रति छोटा है प्रेम है, ये प्रेम एक कण एक ही ना एक ही दिन मुझे वैकुंठ पहुंचा देगा। यही भगवान के प्रति जो प्रेम है गोपियां का, सब भूल गए। समाज क्या कहेगा, हमें हम लोग स्त्रियां हैं, हमारा पति लोग कुछ नहीं देखे, भगवान कृष्ण को जो प्रेम है, आधे रात है, मेरे बच्चे हैं, सास ससुर है, समाज में बंधन, कितने बड़े बंधन है, प्रेम कुछ नहीं मानता है। प्रेम ऐसा एक चीज है वो कुछ नहीं मानता है। एक कुत्ता को भी प्रेम करोगे ना तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा। यही गुण भगवान में, ये प्रेम की भावना, ये प्रेम की चेतना के अनुसार भक्त फर्क पड़ जाते हैं। सत्यभामा और रुक्मिणी में फर्क पड़ गया ये प्रेम की तारतम्य के अनुसार। यदि वो सारे भक्त भगवान के लिए समान है, लेकिन ये प्रेम का लेवल जब आता है भक्त ऊंचा उज्जवल बन जाता है। प्रकाशित हो जाते हैं, एक सूर्य की भांति है। और ये प्रेम की जब कुछ और मिलावट हो जाता है तो फिर सूर्य को बादल जैसे ढक देती है। कुछ प्रकार हमारे प्रत्येक जीव का, जीव जीवात्मा की जो सुप्त कृष्ण प्रेम, हाँ, काम ढक देती है कि और कुछ चीज ढक देती है, उनका प्रकाश, प्रेम की जो प्रकाश है, हाँ, वो प्रकाशित नहीं हो पाती है। सुदामा ने क्या लेके गया था, झुपड़ी में रहने वाला लोग क्या लेके गया था, लेकिन वहां पहुंच के जब द्वारका का वैभव को देखा वो संकोच करने लगा। अरे ये क्या, कितने ऐश्वर्यशाली सेवा हो रही है भगवान का यहाँ पर, कितने ऐश्वर्यशाली सेवा हो रही है, लेकिन मैं क्या। नहीं, भगवान सबके अंतर में रहते हैं, वो जान लिए, छीन करके खाए। भगवान ने सुदामा का ये जो भेंट है, भाला की सुदामा ने छुपाने लगा, ऐसे वो छुपा रहा था, लेकिन भगवान ने उनका छुपाया हुआ चीज को छीन कर दिया। जब हमारे लिए कुछ आता है, हमारा सेवा के कुछ मतलब आता है, तो हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन भगवान का सेवा जब आता है सामने, हमें नरक में भी जाना पड़े, हमें नरक में भी चले जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे गोविंद जी, तब गोविंद जब गोविंद भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेवा करने के लिए आए, तो वो समय चैतन्य महाप्रभु दरवाजा को सटा करके सोए हुए थे, और गोविंद को अंदर कमरे के अंदर जाना था, कमरे के अंदर उनका कुछ सेवा था, वो जाना था, और महाप्रभु दरवाजा को लग करके सोए हुए हैं, कैसे जाए। तो वहां पर गोविंद क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को लांग करके, चैतन्य प्रभु लांग करके अंदर चले गए, रात भर सेवा किए, जो सेवा था सेवा किए। सेवा हो जाने के बाद रात, पूरा रात, पूरा रात वो वहीं पर खड़े हुए हैं, वहीं पर खड़े हुए हैं। जब भगवान का सेवा करने की बारी आया तो महाप्रभु को, भगवान को लांग गए, लेकिन जब अपना, अपने सोने सोना था, सेवा हो गया, वो खुद ही सोना था, तो अपना बारी जब आया और भगवान को लांगने के लिए उनके भीतर कोई शक्ति नहीं रहा, लांग नहीं पाए, वहीं पर रात का रात गोविंद ने वहीं पर खड़े हो गए। सुबह हुआ और चैतन्य महाप्रभु जब वो जगे तो देखें, अरे गोविंद खड़ा हुए, खड़ा हुआ है, पूछे आप अंदर कैसे आए, मैं तो ऐसे सोया हुआ था, आप अंदर कैसे आ गए। तो गोविंद जी बोले, हाँ प्रभु मैं आपको लांग करके आया। तो महाप्रभु बोले, लांग, यदि लांग करके आए तो फिर आप रात पूरा रात ऐसे ही खड़े रहे, तो लांग करके आए तो लांग करके भी आप जा सकते, क्यों नहीं गए। तो गोविंद ने उत्तर दिया, प्रभु वो समय मैं जब आपको लांघा वो समय मुझे आपका सेवा करना था, इस समय मेरा सेवा करना था, जो मेरा सेवा करना था वो समय मैं आपको लांग नहीं पाया। तो अपने इस समय जो आता है तो हमें उस मामले में नहीं विचारवान होना चाहिए, लेकिन भगवान के समय यदि हमारे सामने कुछ भी प्रकार आ जाए तो बिना विचार करते हुए भगवान की सेवा कर लेना चाहिए, कि मिलेगा कि नहीं। इसी प्रकार, जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सेवा, जिस प्रकार भक्त अपने भक्तों भगवान की सेवा करना के लिए उत्सुक है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभु, चंद्री प्रभु, सनातन गोस्वामी, जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चल रही थी, रूप गोस्वामी प्रभु या सनातन गोस्वामी प्रभु जगन्नाथ जी रथ के चक्के अपने जीवन देने के लिए जा रहे थे? सनातन गोस्वामी वो व्यर्थ मान रहे थे, ये शरीर अभी भगवान का लायक नहीं है, योग्य नहीं है। सनातन गोस्वामी कुछ हो गया था और वो चैतन्य सेवा करने के लिए अपने को योग्य नहीं मान रहे थे, तो फिर ये जीवन का क्या अर्थ रहा, ये जीवन का क्या अर्थ है? और हमारा जीवन जो बना हुआ है भगवान का सेवा के लिए ही, भगवान यदि हमें कुछ हमें बनाए उनके सेवा के लिए हमें बनाए हैं। हाँ, तो सनातन गोस्वामी प्रसाद जब अपने को अयोग्य समझे भगवान की सेवा के लिए, तो सोचे नहीं, ये जीवन रखने का फायदा नहीं है। और जगन्नाथ जी का रथ चल रही थी, तो जगन्नाथ जी के रथ के चके नीचे अपनी जान देने के लिए, जीवन देने के लिए चले जा रहे थे, तो महाप्रभु पकड़े, ये जीवन तुम्हारा नहीं है, मेरा है, ये जीवन तुम्हारा नहीं है, मेरा है, तो कोई अधिकार नहीं है उनको नाश करने का। ऐसे भगवान अपने भक्तों का शरीर को भी अपना मानते हैं, इसीलिए भक्तों के साथ हमें जब करते हैं तो बड़े तैयार सावधान रहना चाहिए। कौन सा भी भक्त मुझे याद आ रहा था, भूल रहा हूँ, ये जो भगवान का सेवा हमें प्राप्त हुआ, भाग्य से हमें प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार मैं भी बताया कि भक्त भगवान का सेवा करने के लिए हमेशा योजना बनाता रहता है, योजना बनाता रहता है, उनका चिंतन यही रहता है कैसे भगवान का सेवा करूं, मुझे कैसे भगवान का सेवा मिले। भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक घटना है उड़ीसा के, उड़ीसा में एक बार अकाल पड़ गया, सत्य की बात है, अकाल पड़ गया, उड़ीसा में अकाल पड़ गया और घर घर में हाहाकार मच गया, किसी के घर में कुछ नहीं खाने के लिए। जगन्नाथ जी के भक्त थे, जगन्नाथ जी के भक्त थे और गृहस्थ थे, बहुत बड़े सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ भक्त थे, और जगन्नाथ जी बड़े भक्त थे और उनका वृत्ति के साथ ही भिक्षा मांगेंगे घर चलेगा, और असमय में अकाल पड़ गया और जिस द्वार में गए उस द्वार में नाना उनको मिला नहीं, अब कौन क्या देगा, अकाल है, सब अपने लिए व्यस्त हैं, ये लोग कौन देगा, नाना हो करके वो जो भक्त थे जगन्नाथ जी के, सब द्वार में निराश होकर के अपने घर में आए और बड़े ही ऐसे बैठ गए, और उनके घर में जो पत्नी थी बड़े दुखी होकर के आकर, देखो तो हम बड़े हैं, हमें स्नान कर लेंगे, घर में जो दो ये बच्चे लोग हैं उनका विकल देखा नहीं जाता है, तो कुछ तो करो। तो पत्नी के ये सुनते, आपका कोई पत्नी ने बोले कि तो आपका कोई बंधु है तो उनके घर में चलो, थोड़ा जाओ, थोड़ा कुछ तो लेके आओ, ये समय ये परिस्थिति से निकल जाए। तो पत्नी की बात सुनकर के वो जो भक्त थे तो कहने लगे, हाँ आप मुझे मेरा एक बंधु है, आप मुझे याद कराए। हाँ मेरा एक बंधु है, आप मुझे याद कराए, जगन्नाथ ये पूरी में रहते हैं। भक्त ने कहने लगे, मेरे एक बंधु है वो पूरी में रहते हैं, तो चलो हमें कल निकल पड़ते हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ जाएंगे हमारा सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। तो पत्नी उनका बात सुनकर के तुरंत कहने लगी, चलो घर में जो भी है मैं इकट्ठा करता हूँ, हमें लेके कल निकल पड़ेंगे। तो जगन्नाथपुरी से वो दूर है, चल के जाएंगे तो 10-12 दिन लगेगा, 10-12 दिन चार दस दिन लगेगा। तो अपने पैदल में चलते चलते, बच्चे थे पति पत्नी, चलते चलते भूखा प्यासे ठंड में चलते चलते जगन्नाथ पुरी में जब जाके पहुंचे, उस समय जगन्नाथ जी का मंदिर में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा था, बहुत बड़ा उत्सव था, बहुत बड़ा उत्सव था। तो पहुंचे, जब पहुंचे देखे एकदम बहुत भक्त आए हुए हैं, एकदम धसा धसी ऐसे हो रही है, वो जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पत्नी ने कहले देखो भूख है, बच्चे लोग भूखे हैं, करो कुछ, जाओ बंधु के पास, आपका कुछ मांग के लेके आओ, हमें प्राण तो बच जाए। तो वो भक्त बोले देखो आज मेरे बंधु के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, देखो मेरे बंधु के घर में कितने लोग आए हैं, तो आज इतने लोग आए हैं आज उनको मिल नहीं सकते हैं, तो क्या करें। तो जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ मंदिर की जो पैजन अला होती है ना, लक्ष्मी जी के जो किचन है, किचन के लग करके पैजन अला होती है, राइस को उसमें राइस को बॉयल करने के बाद वो पानी को निकालते हैं, तो निकाल करके गाय को पिलाते हैं, नहीं तो वहां पर वो पैजन अला है, वो नला में वो पानी को छोड़ देते हैं। तो भक्त और उनकी पत्नी बच्चे कोई पैजन अला के पास जाकर के पहुंचे, तो भक्त ने बोला देखो आज पेज पी के अपने को शांत कर लेंगे तो कल बंधु को मिलेंगे। तो पत्नी ने मान गई, बच्चे पत्नी और खुद वो थोड़ा पेज पी के वहीं पर सो गए, सो गए, और पत्नी सो गई और बच्चे सो गए, और ये भक्त के आंख में नींद नहीं है, और सोचने लगे अरे मैं तो कह दिया ये लोगों को कि मेरे एक बंधु है, उनके पास जाएंगे तो हमारा सारा अभाव दूर हो जाएगा। जगन्नाथ जी को प्रार्थना की, हे प्रभु देखो मैं तो ये लोगों को बता दिया, तो मुझे मालूम है आपको छोड़कर मेरे ही दुनिया में, मेरे ही संसार में और कोई बंधु नहीं है, तो आप ये परिस्थिति में, आप ये हालत में यदि आप भक्त का मान नहीं रखोगे तो आपका भक्त भक्त का वचन झूठा हो जाएगा। ऐसे भगवान के उद्देश्य, जगन्नाथ जी के उद्देश्य हाथ जोड़ दिए, दो शब्द कह दिए, कहकर के उनको भी थोड़ा रास्ता भर थक गए थे, चल चल के भूखे थे, शरीर एकदम थक गया था, तो उसी में थोड़ा आंख लग गया था, थोड़े ऐसे तकलीफ हो गए थे, नींद नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे हो गए थे, ऐसे हो गए थे, तो स्वयं उस समय उनका आवाज सुनाई पड़ा, और वो उनका गांव, उनका नाम था, उनका नाम भी था बंधु महांती, वो भक्त का नाम था, जैसे हमारा मेरा नाम है आदि युगदास, कि उनका नाम है विष्णु, इसी प्रकार वो भक्त का नाम था बंधु महांती। जब जगन्नाथ जी के मंदिर में सब उत्सव हो गया तो स्वयं जगन्नाथ जी अपने निकले, किचन में गए, एक सोने के प्लेट में, एक सोने के प्लेट में जगन्नाथ जी क्या नहीं खाते हैं जगन्नाथपुरी में, देखोगे तो स्मरण जब होता है जुआ में लाल गिनने लगता है, वहां पर जगन्नाथ जी को इतने स्वादिष्ट व्यंजन जगन्नाथ जी के लिए बनती है, ऐसा बताया गया कि स्वयं लक्ष्मी जी वहां पर जगन्नाथ जी के लिए रसोई करती है। और जगन्नाथ जी किचन में गए सोने के प्लेट लेकर, और बहुत सारे पकवान है, सब वो सोने के प्लेट में सजा के रखे, तो सजा करके अपने हाथ में लेकर के रात के समय जगन्नाथ जी अपने हाथ में वो सोने के प्लेट में सब लेकर के आए, और कुछ ही दूर में जगन्नाथ जी वो भक्त को आवाज दिए, ओ जो उनका गांव का नाम लेकर के बुलाएं, ओ जाजपुर, उड़ीसा में के जगह का नाम है जाजपुर, सबसे पीछे, ओ जाजपुर से आने वाले, आओ मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के आया हूँ, लेकर के जाओ, अपना भूख को शांत करो। और देखिए नहीं, वो भक्त बोला और कोई जाजपुर में मैं अकेला हूँ क्या, और कोई आते होंगे, और कोई किसी को बुलाता होगा, मुझे मुझे कौन जानता है, मैं एक ऐसा, मुझे कौन जानता है, मुझे क्यों कोई कौन क्यों बुलाएगा, ऐसा सोचकर फिर वो सो गए। तो सो गए, फिर जगन्नाथ जी बोले ए जाजपुर से आने वाला बंधु महांती, मैं तुमको बुला रहा हूँ, सो क्या गए हो, आओ मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के आया हूँ, लो। तब जाके उनको, अरे मैं जाजपुर से आया हूँ, मेरा नाम बंधु महांती है, तो इस प्रकार का बुला रहा है, तो जाके देखें कौन मुझे बुला रहा है। तो जाकर जब देखें कि ब्राह्मण है, बहुत लंबे हैं, हाँ देखने से एकदम मोहित हो जाएंगे, हाँ उनके हाथ में एक जगचग कर रहे एक प्लेट है, और उनके हाथों में कितने प्रसाद है, प्रसाद का सुगंध ही निकल रही है, सुगंध से वो भक्त का पेट भर गया है। तो हाथ बढ़ा दिए, हाँ जगन्नाथ जी हाथ बढ़ा करके अपने भक्त को प्रसाद का प्लेट दे दिए, दे करके बोले देखो आपके परिवार के साथ वो प्रसाद का करो, प्रसाद लो, और बाद में आकर के हाँ ये प्लेट में लेके जाऊंगा। बोल करके समय हो गया, तो प्लेट ले जाऊंगा, ले जाऊंगा बोल के जगन्नाथ जी हाँ जो ब्राह्मण के वेश में आए थे चले गए। तो भक्त ने अपने वहां पर पहुंचे, अपने पत्नी को उठाए, ए उठो उठो जगो, देखो बच्चे को उठाए, अरे देखो रे देखो क्या कितना प्रसाद आ गया। तो उठ के सारे पत्नी बच्चे वो प्रसाद लिए, जगन्नाथ जी का प्रसाद लिए, शांत हो गया। अभी प्रसाद पेट में गया, आराम से सारे को सारे सो गए, नींद नहीं आ रहा था, जगन्नाथ जी का प्रसाद जो पेट में पहुंच गया तो सारे के सारे सो गए। और ये भक्त जो था वो प्लेट को धो करके अपने कंधे में एक फटा हुआ एक कपड़ा डाल के रखा था, वो फटा हुआ कपड़ा उसको कपड़ा में उस सोने का प्लेट को लिपटा करके रख करके बाजू में सो आया, प्लेट धोकर आया वो जगह पे, आके देखा तो ब्राह्मण नहीं नहीं थे। अब बुलाया हाँ, लेकिन कोई और आवाज नहीं आया, तो प्लेट को कपड़े में लिपटा करके बाजू में रख करके सारे परिवार सो गए। और इतने सो गए, इतने सो गए, सूर्य आ गया, सुबह हो गया, सूर्य का उजाला के द्वारा चारों तरफ सुबह हो गया, हाँ तो उनको नींद नहीं खुल रहा था, सोए हुए हैं। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी के सेवक लोग भक्त लोग जगन्नाथ जी के अंदर मंदिर के भीतर गए सेवा के लिए, जगन्नाथ जी का जब भक्त लोग किचन में गए गए देखे, अरे जगन्नाथ जी का प्लेट नहीं है, सोने की प्लेट, हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हाँ जगन्नाथ जी का प्लेट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो राजा के पास पहुंचा, तो राजा आए, सारे सेवक को बंदी बनाए, तो क्या गया तुम लोग सेवा करते हो, कहाँ क्या हुआ। तो सारे भक्त लोग इधर उधर ढूंढने लगे, ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते देखे, अरे ये तो ये कौन सोए हुए हैं, और फटेला कपड़ा में लपटा के रखा था, सूर्य का उजाले के द्वारा सोने का कपड़ा चमक रहा था। तो एक भक्त ने देखा, अरे ये पकड़ो पकड़ो ये तो है इधर इधर इधर। तो भक्त जाके देखा तो, अरे ये तो जगन्नाथ जी के प्लेट, जगन्नाथ जी का प्लेट है, ये चुराया, मारे पीटे, चोर है चोर है, हाँ ये किए, दुनिया का बात कहने लगे, मार पीट करके हाँ उनको जेल में कर दिए। और ये भक्त जाकर के जेल में हाँ, तो भक्त जेल में पड़ करके कहने लगा, मेरा क्या कसूर है जगन्नाथ, मैं तो आपको प्लेट देने के लिए, वो जगन्नाथ जी के उद्देश्य में कह रहा है, अरे कौन आए थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, हाँ आए थे, मैं प्रसाद तो लिया लेकिन मैं प्लेट तो वापस करने के लिए गया था, उस समय वो नहीं थे, मेरा क्या कसूर है। हाँ तो ये जेल में पड़े पड़े हाँ बड़े दुखी होके भगवान के उद्देश्य से प्रार्थना की, आप देखो आगे क्या, आगे की बात देखो, मैं क्या कर सकता हूँ। अब भक्त के ये दुख के समय जगन्नाथ जी का और सराहा नहीं गया, वो सहा नहीं पाए अपने भक्त की दुख को। हाँ रातारात राजा के पास गए, राजा को स्वप्न में सोए हुए थे राजा, उनके स्वप्न में गए, देखो मेरे भक्त आज जेल में वो दुखी है, जाओ हाँ इस वक्त जाओ, रात का रातारात जाओ, हाँ मेरे भक्त को वहां पर उनको अच्छे कपड़े पहनाओ, उनका चरण धोओ, उनको स्नान कराओ सुभाषित जल में, उनको रात में बिठा करके संकीर्तन करके, हाँ उनको रथ में बिठा करके मेरे भक्त को एकदम सम्मान सादर अभ्यर्थना करके लेकर के आओ, आकर के मेरे मंदिर के बगल में उनके लिए एक महल बना दो, और उनका जीवन तमाम उनके लिए उनके परिवार के लिए अन्न पानी का व्यवस्था करा दो। हाँ स्वयं जगन्नाथ जी जब इस प्रकार का राजा को आदेश दिए, हाँ तो हाँ राजा तुरंत नींद से उठे, उठ करके वास्तवता क्या है, और वो जानते थे ये घटना घट गई थी, तो तुरंत वो आए, इसी वक्त आए, आकर के वो भक्त के चरण में गिरे, हाँ उनका चरण का धूल लेकर अपने सर में लगाए, हाँ मेरे गलती वो की, हाँ मुझे क्षमा कीजिए, इस प्रकार का सम्मान करके रथ में बिठा करके उनके परिवार के साथ, हाँ आज, हाँ आज भी, हाँ तो राजा ने जगन्नाथ जी के मंदिर के मंदिर के पास ही वो भक्तों के लिए बहुत सुंदर महल बना दिए और उनका जीवन तमाम जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का व्यवस्था कर दिए। ये है इसी प्रकार जो भक्त के भीतर भगवान के सेवा करने की प्रवृत्ति है, भगवान भी हाँ उनका सेवा को भूलते नहीं है, भगवान भक्तों की सेवा को भूलते नहीं है। सुदामा को इतना देने के बाद भी भगवान ने क्या कहा, मैं तो उसको कुछ भी नहीं दिया, हालांकि वैकुंठ से वैभव बना के दे दिए, लेकिन देने के बाद भी क्या बोले, मैं कुछ नहीं दिया। तो आज के प्रसंग से जसोदा मैया का जिसका कृष्ण की सेवा करने के लिए हृदय है, उसी प्रकार हृदय लेकर के हाँ छोटी सी सेवा देने के लिए यदि भगवान के पास हमें आएंगे, कोई हृदय होना चाहिए, भाव होना चाहिए, इसका हृदय भाव लेकर के यदि भगवान के पास आएंगे, भगवान हमारा सेवा को स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। श्री हनुमान की जय, जय गोविंद आनंदे।